Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Shobhadra Jaya Gauranitai, 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 Shri Shri Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Shri Nama Sankirtana ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Grantra Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayesha Vatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttam Sloke Bhaktir Bhavati Naishtriki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kamaraya Govindaya Namo Namah. हरे कृष्णा. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 28. अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति. श्लोक क्रमांक 52. ब्राह्मण उवाच का तुम कश्याशिको वायम शयानो यस्य सोचसी जानासि किम सखायम माम येनाग्रे विचर्तः. ब्राह्मण उवाच का त्वं कश्याशिको वायम् शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचर्तः. ब्राह्मण उवाच का त्वं कश्यासि को वायम् शयानो यस्य सोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचर्तः. Janasi kim sakhayamma yena agre vichachartaha Brahman uvacha katum kashyasi ko vayam shayano yasya sochasi janasi kim sakhayamma येनाग्रे विचर्तः. ब्राह्मण उवाच का त्वं कश्यासि को वायम् शयानो यस्य सोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचर्तः. माता का त्वं कश्यासि को वायम् शयानो यस्य सोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचर्तः. शब्दार्थ. ब्राह्मण उवाच. विद्वान ब्राह्मण ने कहा. का कौन त्वं तुम कस्य किसकी असि हो कह कौन वा अथवा अयम यह पुरुष शयानः लेटा हुआ यस्य जिसके लिए शोचसि तुम विलाप कर रही हो जानासि किम क्या तुम जानती हो सखायम मित्र को माम मुझको येन जिसके साथ अग्रे पहले
विचरता तुम विचार विमर्श करती थी। हाँ निश्चय ही। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है और वह बाह्य रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। भगवान अंतःकरण में निवास कर सकता है और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकता है। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। किसी भी कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो आता है, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव उसके साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्दत रहता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ये नाग्रे विचर्थ, अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते विष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी उपस्थित भक्त और सभी अनुपस्थित भक्त और सभी FM पर उपस्थित भक्त सबके आशीर्वाद की प्रार्थना एवं आकांक्षा करते हुए मैं इस संदर्भ में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। यह श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु और युगल श्याम प्रभु की विशेष कृपा है। आज की क्लास श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु देने वाले थे, लेकिन भौतिक जगत के कुछ आपातकालीन परिस्थिति के कारण उनको घर जाना पड़ा कि माता की तबीयत ठीक नहीं है। उसके कारण युगल श्याम प्रभु की कृपा से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये जो संदर्भ है, जो पुनर्जन उपाख्यान है, कई महीनों से हम इसका श्रवण करते आए हैं। इस अध्याय के शुरू में वर्णन आता है कि किस प्रकार से राजा प्राचीन वरिष्ठ अपना देह त्याग करते हैं। नहीं, प्राचीन वरिष्ठ तो सुन रहे हैं। प्राचीन वरिष्ठ को जो पुरंजन उपाख्यान नारद मुनि सुना रहे हैं, उसमें पुरंजन किस प्रकार से जो 9 द्वारों वाला जो शहर है, उसको कैसे वो शहर के ऊपर विपत्ति आती है, चंडवेग का उसके ऊपर आक्रमण होता है, और किस प्रकार से उनको वह शहर छोड़कर जाना पड़ता है, उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम में कई जगह पर जो मृत्यु है या शरीर त्याग करने की प्रक्रिया है, उसका वर्णन मिलता है। तीसरे स्कंद में भी कपिल देव अपनी माता देवोती को इसका विस्तार से वर्णन करते हैं कि मृत्यु के समय किस प्रकार का कष्ट जीवात्मा को भोगना पड़ता है। तो हालांकि आजकल के समाज में मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता है और लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये अशुभ है, अशुभ चीज़ों के बारे में बात मत कीजिए, लेकिन वास्तव में अगर जीवन का तत्व जानना है, मूल जानना है, जीवन का उद्देश्य जानना है, तो मृत्यु की सच्चाई को जानना ये परम आवश्यक है। इसीलिए भागवतम इस चीज़ों को छुपाता नहीं है। कई जगह पर इसका वर्णन आता है कि मृत्यु के समय किस प्रकार की पीड़ा होती है, किस प्रकार की वेदना होती है व्यक्ति को, और मृत्यु होने के बाद बाकी लोगों को किस प्रकार से विरह होता है, कष्ट होता है। तो शुरू के श्लोक में उसका वर्णन आता है और बहुत विस्तार से नारद मुनि प्राचीन वरिष्ठ को बताते हैं किस प्रकार से राजा पुरंजन कष्ट झेलता है। लेकिन क्योंकि वो यज्ञ भी करता था, इसलिए उसको स्वर्ग जाने का अवसर मिलता है, और स्वर्ग से स्वर्ग का काल खत्म होने के पश्चात उसको वैदर्भी नाम की कन्या के रूप में जन्म मिलता है, और इस समय भगवान की और गुरु की कृपा से उनको मलयध्वज नाम के राजा से उनका विवाह होता है। और आचार्यगण बताते हैं किस प्रकार से वेदर भी एक जीवात्मा का भूमिका कर रही है और मलयध्वज एक प्रमाणिक गुरु है। तो ये जीव का केवल सौभाग्य मात्र होता है, उसका कुछ ऐसा नहीं कि कुछ विशेष योग्यता होती है। जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को पूछा कि हमारे अंदर ऐसी क्या योग्यता थी, क्या विशेषता थी कि हमको ये इतना जो उच्चतम कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और आप जैसे गुरु हमको प्राप्त हो, तो प्रभुपाद जी ने वास्तविकता में उत्तर दिया, यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई योग्यता नहीं, आई मेड यू क्वालिफाइड। तो इसलिए भक्ति के पथ पर आना, नवविधा भक्ति को जान पाना, भक्ति लता का बीज प्राप्त करना, इसके लिए जीव कभी योग्य नहीं बन पाता है। यह केवल अहेतु की कृपा है जो भगवान और गुरु की सामूहिक कृपा के रूप में आती है और फिर जीव को भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। इसलिए भारत में जन्म लेने के बाद भी, चार नियम पालन करने के बाद भी, थोड़ा गीता भागवत का संपर्क होने के बाद भी, हमको उसके लिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पिछला बैकग्राउंड था उसके कारण हम इस्कॉन में आ गए या भक्ति प्राप्त हो। ये तो गुरु और कृष्ण की अहेतु की कृपा के कारण हमको ये पथ मिलता है। अन्यथा बहुत लोग हैं जिनके घर पर विग्रह हैं। पूना में ही हमारे कई सारे वेलविशर हैं जिनके घर पर राधा कृष्ण के साक्षात विग्रह हैं। और कई लोग हैं जो भागवतम की कथा का आयोजन करते हैं, हर साल में कम से कम एक बार लाखों रुपया खर्च करते हैं। कई लोग हैं जो हर महीने तिरुपति जाते हैं और हर साल कम से कम 4-5 तीर्थ स्थानों पर जाकर के आते हैं, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण मंत्र की महिमा और भक्तों का संग और भक्ति की महिमा और ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों का संग ये उनको प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको कुछ लाभ दे सकती हैं, कुछ दे कैन मेक अस पायस बट दे कांट गिव अस स्पिरिचुअल विजडम। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमको प्राप्त होता है ये केवल गुरु और कृष्ण की आयतों की कृपा से प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से वैदर्भी को मलयध्वज का संग प्राप्त होता है और मलयध्वज की सेवा वो करती हैं बहुत निष्ठापूर्वक। और इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी गुरु और शिष्य के संबंध को और किस प्रकार से शिष्य गुरु की सेवा करता है निष्ठापूर्वक, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो पति पत्नी का संबंध गुरु और शिष्य के संबंध के समान ही है। दोनों में जब निष्ठापूर्वक सेवा की जाती है तब उस सेवा का लाभ उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वैदर्भी मलयध्वज की सेवा करती हैं और मलयध्वज वैदर्भी के माध्यम से एक पुत्री और 7 पुत्र उत्पन्न करते हैं और उनके माध्यम से पूरे विश्वभर में भक्तों की संख्या और भक्ति के मार्ग का प्रचलन करते हैं। और उसके बाद मलयध्वज कुलाचल नाम के जगह पर जाते हैं अपना राज्य छोड़कर और वैदर भी उनके साथ जाते हैं। तो जैसा कि कमलोचन प्रभु बता रहे थे कि जब अगर कोई गुरु निर्जन भजन के लिए जाते हैं तो कुछ एकदम आंतरिक शिष्य उनके साथ जाते हैं, बाकी शिष्य वहीं रहकर भक्ति करते हैं। तो दूसरा एक अर्थ भी बताते हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, कई बार शिष्यों को ये अवसर होता है कि जो श्रवण कीर्तनों का मार्ग है, जो भक्ति का एक जो सामान्य मार्ग है, उस पर चलकर भी भक्ति में प्रगति करें, लेकिन जो भक्त गुरु के अधिक निकट है वो गुरु की मनोभावना को जानकर केवल श्रवणम कीर्तनम करने के साथ साथ उनकी जो विशेष इच्छाएं हैं उनको पूरी करने का भी चेष्टा करता है। जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कई सारे शिष्य थे, उनमें से कई सारे सन्यासी शिष्य भी थे और सभी भक्ति करते थे, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं करते, लेकिन जो उनकी हृदय की एक विशेष इच्छा थी कि इस महाप्रभु के ज्ञान का, महाप्रभु ने जो हमको पद्धति दी है इसका प्रचार और प्रसार पाश्चात्य देशों में हो जाए, इसको शिला प्रभुपाद जी ने हृदय में धारण करके उन्होंने उनकी जो मनोविष्ट था, मनोइच्छा थी, उसको पूरा किया। तो ऐसे शिष्य विशेष होते हैं। तो ऐसे शिष्यों की श्रेणी में वैदर्भी का नाम आता है। इसका अर्थ क्या है? व्यवहारिक रूप से हम हमारा जीवन यापन करते हैं, हम जानते हैं कि हमको 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है और अपने स्तर से भक्ति का प्रचार और पालन करना है, लेकिन अगर हमको भक्ति में और तीव्रता से प्रगति करनी है तो गुरु के मनोभाव को जानकर, विशेष रूप से इस कौन में शिला प्रभुपाद जी के मनोभाव को जानकर, शिला प्रभुपाद जी जिस तरह की आकांक्षा हमसे करते हैं अगर उस तरह की आकांक्षा के अनुसार हम प्रयत्न करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति और तीव्रता से हो। तो 2 स्तर है, गलत नहीं है, लेकिन ये एक अलग स्तर है जिसमें कि शिष्य गुरु की मनोभावना पर बहुत तीव्रता से विचार करता है और गुरु को प्रसन्न करने के लिए विशेष चेष्टा करता है और जो सामान्य रूप से भक्ति कर रहा है उसके अतिरिक्त भी। तो अगर हम देखेंगे इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी उनके खुद के जीवन से, तो श्रील प्रभुपाद जी तो कभी रिटायर नहीं हुए। एक बार मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो रिटायर होकर के मायापुर में आकर के निर्जन भजन या भजन करेंगे भक्तों के साथ। तो सब भक्तों ने बोला हरि बोल। तो प्रभुपाद जी, फिर सब लोगों ने सोचा प्रभुपाद जी की ओर देखा, प्रभुपाद जी तो उस समय कम से कम 75-76 वर्ष के थे। तो प्रभुपाद जी ने लगा उनको, तो प्रभुपाद जी ने कहा जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो सब लोग समझ गए कि हम भी कभी बूढ़े नहीं होंगे, इसलिए इस्कॉन में प्राय कोई रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारी सेवा बढ़ती जाती है। अगर आप शिला इंद्रदमन स्वामी महाराज का पोलैंड फेस्टिवल देखेंगे तो शायद हम भी अगर उसमें केवल भाग लेंगे या कुछ एक सेवा करेंगे तो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे, हमको अनुभव है जन्माष्टमी में कितना थक जाते हैं। लेकिन इतना आयु होने के बाद भी कोई प्रभुपाद जी के शिष्य रुक नहीं रहे, श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज पदयात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिरों की स्थापना करते जा रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज अभी गोवर्धन इको विलेज का विस्तार करते जा रहे हैं। तो उनके गुरु और भगवान के प्रति जो सेवा भाव है उसमें कमी नहीं आती। तो इस प्रकार का ही मनोभाव हमको लेना है। हमारे मन के अंदर जो रिटायरमेंट के प्लान चलते हैं, जो थोड़ा कूल डाउन और थोड़ा स्टैंड बाई और थोड़ा मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग होने का प्लान बनता है, उनको प्रभुपाद जी के साथ तुलना करके प्रभुपाद जी के मनोभाव को समझ कर अगर सेवा करेंगे तो और विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये मलयध्वज और वैदर्भी के संदर्भ में बताया गया है। तो इस प्रकार से वैदर्भी मलयध्वज की सेवा करती हैं और एक विशेष गुण उनका बताया गया है कि एकदम शांति से सेवा करती हैं, जितना पूछा जाता है उतना ही बोलती हैं। तो ये शिष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि शिला रूप गोस्वामी पाद ने हमको भक्ति उपदेशामृत नाम का ग्रंथ दिया है जिसमें 11 श्लोक हैं और वो 11 श्लोक एक साधक स्तर से लेकर के जो भाव और प्रेम का स्तर है वहां तक हमको ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सबसे पहली बात जो कहते हैं वाचो वेगम, तो वाचो वेगम अर्थात बोलने का जो हमारा उत्साह है उसको नियंत्रित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना हम बोलते हैं उतना हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, बोलने के लिए सोचना पड़ता है, और जितना ज़्यादा बोलते हैं जितना ज़्यादा सुनते हैं उस आध्यात्मिक चीज़ों के अतिरिक्त उससे मन उद्विग्न हो जाता है। इसलिए वाचो वेगम इसको पहला पायदान पहला सीढ़ी बताया गया है। सबसे पहले जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए और जिह्वा पर नियंत्रण करना ये बहुत कठिन है दोनों मामलों में। एक प्रसाद जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, जय श्री श्री गौरनिताय की, जय श्री प्रभुपाद की। तो दोनों ही संदर्भों में, खाने के संदर्भ में और बोलने के संदर्भ में, दोनों ही संदर्भ में जिह्वा पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। भागवतम के 11 स्कंद में वर्णन आता है कि बाकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सरल है लेकिन अगर जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है तो थोड़े ही समय की बात है कि फिर से सारी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएंगी। जिह्वा में इतनी शक्ति है। तो कभी कभी खाने के लिए हमको बलपूर्वक नियंत्रण करना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं देता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, या हमको पता है कि अगर ये खाएंगे तो इसके बाद क्या इसका परिणाम होगा। तो कभी कभी बलपूर्वक प्रकृति के विधान से हमें खाने के ऊपर नियंत्रण करना ही पड़ता है, कुछ रास्ता नहीं बचता है, कोई उपाय नहीं बचता है। लेकिन वाचो वेगम इसके ऊपर तो बहुत प्रयत्न करके नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वैदर्भी ने किया। वैदर्भी मलयध्वज की सेवा करती थी शांत रूप से, कभी कुछ अनावश्यक रूप से बोलती नहीं थी, अनावश्यक रूप से चर्चा नहीं करती थी। तो ये भी एक शिष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि मौन धारण करे। मौन धारण करने का अर्थ है कि केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो शास्त्रगत वस्तुएं हैं, जिनसे भक्त समाज को लाभ होने वाला है, भक्त समाज का उत्साह बढ़ने वाला है, दूसरे भक्तों भक्ति के लिए और उत्साहित होने वाले हैं, केवल ऐसी ही चीज़ों की चर्चा की जाए। और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में साक्षात ठीक प्रकार से ज्ञान भी नहीं है और कहीं से सुना है, कहीं से कुछ देखा है, उनकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, उसको चर्चा में नहीं लेके आना चाहिए। परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज उदाहरण देते थे कि प्रजल्प करना और लोगों को अफवाह फैलाना ये उस प्रकार का चीज़ है। मान लीजिए एक जगह किसी ने विष्ठा कर दी, वहाँ पर विष्ठा पड़ी हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति उत्साहपूर्वक उसको उठा करके थोड़ा थोड़ा हर जगह डाल देता है, थोड़ा थोड़ा लोगों को बांट देता है, आप भी लीजिए आप भी लीजिए, तो ये अच्छा कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से वैदर्भी जब मलयध्वज की सेवा करती है निष्ठापूर्वक, तो मलयध्वज जब शरीर त्याग कर देते हैं अनेक प्रकार के तपस्या करने के बाद, भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद, तो फिर वैदर्भी विलाप करने लगती है जिसका वर्णन पिछले कुछ श्लोकों में हुआ। तो पिछले काल में स्त्री का पति के प्रति, पत्नी का पति के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति इतना प्रेम होता था, इतना गाढ़ा संबंध होता था कि वे उनकी चिता में जलने के लिए तत्पर रहते थे, कोई बाई फोर्स नहीं। बाद में वो प्रथा बदल गई लेकिन यहाँ तो पाते स्वतः ही। क्यों? क्योंकि जो विरह का जो कष्ट था, विरह की जो अग्नि थी, उस अग्नि का ताप, उस अग्नि से जलने का जो अनुभव है, वो जो उनकी चिता में अग्नि है उसमें जलने से कहीं ज्यादा होता था। अब इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्रकार का प्रगाढ़ संबंध होता था कि वे उनकी चिता में जलने के लिए तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से सती प्रथा होती थी। हम पाते हैं कुंती माता और माद्री, ये दोनों भी पांडु महाराज के साथ चिता में जलने के लिए आतुर थी। धृतराष्ट्र जब शरीर से अग्नि उत्पन्न करके उसमें भस्म होने लगे तो तुरंत गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार से प्रथु महाराज जब तपस्या करके अपने शरीर को भस्म करते हैं तो माता अर्ची भी उसी अग्नि में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं शास्त्रों में भी और अन्यथा भी। तो इस प्रकार के प्रेम का वर्णन हम सुन सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि इसी स्तर का प्रेम आवश्यक है अगर हमको भगवतधाम जाना है तो। हालांकि अभी उस स्तर का प्रेम हमको पत्नी पति के संबंध में या गुरु शिष्य में नहीं दिखेगा, लेकिन यही एक मार्ग है, यही एक स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है कि इतना प्रेम जब कोई व्यक्ति गुरु के प्रति जागृत कर ले कि गुरु के विरह में वो आत्म प्राण त्याग करने के लिए तत्पर हो, तब उसको भगवान का साक्षात दर्शन। ये कंडीशन है, मापदंड है। किसके लिए होता है? जो व्यक्ति को गुरु से इतना प्रेम है कि गुरु के विरह में प्राण त्याग करने के लिए वो तत्पर है, ऐसे व्यक्ति को भगवान साक्षात आकर के मार्गदर्शन करते हैं। तो क्योंकि वैदर भी उस स्तर की पत्नी थी या शिष्य थी, इतना प्रेम उनको मलध्वज से था, तो जब वैदर भी अकेले हो गई तो तुरंत ही परमात्मा एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो ब्राह्मण के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि जब तक हमको भगवान का साक्षात प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तब तक भगवान को साक्षात रूप में पहचान नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ब्राह्मण के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। तो अभी ये श्लोक 52 से लेकर के 64 तक 13 श्लोक में परमात्मा एक ब्राह्मण के रूप में बोल रहे हैं। इसलिए परमात्मा संदर्भ जो है, जो शिलाजीव गोस्वामी ने रचित किया है, उसमें ये भाग बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि वो जीवात्मा से किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार जीवात्मा की सहायता वो करते हैं। तो यहाँ पर आकर ब्राह्मण उनसे पूछते हैं वैदर्भी को कि तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो, यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। और फिर पूछते हैं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तो जब जीवात्मा भोग की इच्छा के कारण आध्यात्मिक जगत छोड़कर आता है तो उसी समय से भगवान परमात्मा के रूप में निरंतर जीव के साथ रहते हैं, और हमारे जो शारीरिक स्तर पर जो संबंध है उन संबंध में चढ़ाव उतार आता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बचपन में भाई भाई में बहुत प्रेम रहता है, बढ़ने के बाद बड़े होने के बाद ईर्ष्या हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्रति कोर्ट केस कर देते हैं। आपको पता है भारत में जो प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से रिलेटेड जो केस होते हैं उनमें लगभग 80% केस घर वालों के बीच में होते हैं। ये भारत के केस का आंकड़ा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो बच्चे साथ में बड़े हुए, साथ में खेले और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते थे, बड़े होने के बाद वही कोर्ट में जाकर के केस लड़ते हैं। तो इस प्रकार से कई बार इससे बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का जो संबंध है जीव के साथ वो निरंतर और शाश्वत रूप से कृपामय रहता है। जीव जो भी करता है भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान को सुहृदम सर्वभूतानम कहा जाता है। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान से बड़ा और कोई हितैषी किसी जीव का नहीं हो सकता है। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि वह उसको पहचान नहीं पाता। उसको पहचानने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए परमात्मा गुरु के रूप में विस्तार करते हैं और गुरु के रूप में आकर के पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और ऐसे भाग्यवान जीवात्माएं जिनके अंदर थोड़ी भक्ति उन्मुख सुकृति है उनको आकर्षित करके उनको भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं। तो भगवान की कृपा से व्यक्ति को गुरु प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, और उस भक्ति लता बीज का सिंचन करने से फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो गुरु और भगवान ये साथ साथ काम करते हैं, ये एक ही पार्टी में, एक ही टीम में, ये दोनों है, ये दोनों एक भी हैं और भिन्न भी हैं। अचिंत्य भेद अभेद तत्व यहां पर भी लागू होता है। गुरु और परमात्मा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमात्मा और गुरु इस तरह गुरु अंतरकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता, भिन्न नहीं है, वही वही परमात्मा गुरु के रूप में आकर के जीव को अपने निकट लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी गुरु का एक व्यक्तित्व है और भगवान का भी व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से भगवान अपने को परमात्मा रूप में, उसके बाद गुरु के रूप में, और उसके अतिरिक्त कई और चीजों के रूप में विस्तारित करके जीव को भगवत धाम ले जाने का प्रयास करते हैं। भगवान पवित्र नदियों के रूप में विस्तार करते हैं जिनमें स्नान करके भक्ति को सुकृति प्राप्त हो, और भगवान ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है उसके रूप में आते हैं और जीव को कृपा प्रदान करते हैं। भगवान अपने पवित्र धामों का प्रकटीकरण करते हैं जिससे वहां आकर के जीव भगवान के निकट आ सके, और भगवान अपने विग्रह रूप में आते हैं जिनकी सेवा करके जीवात्मा भगवान के और निकट आ सके। तो हालांकि और भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, कली काले नाम रूप कृष्ण। तो भगवान हालांकि इतने रूप में प्रकट होते हैं लेकिन जब तक जीव का संबंध उनके गुरु रूपी अवतार से या गुरु रूपी प्रकटीकरण से नहीं होता है तब तक जीव इन चीजों का लाभ प्राय नहीं ले सकता है। थोड़ा लाभ होता है, अज्ञा सुकृति जागृत होती है, लेकिन इन चीजों का लाभ पूर्ण रूप से लेने के लिए भी गुरु के शरण लेना और गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करना ही आवश्यक है। जैसे हम बता रहे थे कि कई लोगों के घर में विग्रह होते हैं और कई बार लोग भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, लेकिन जब तक गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किए हैं और जब तक गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं तब तक विग्रह सेवा का फल वो केवल सुकृति के रूप में रहेगा। जब प्रमाणिक गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं और उनके आज्ञा अनुसार आदेश अनुसार विग्रह की सेवा करते हैं तब हमारी भक्ति में प्रगति होती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतों का अध्ययन भी कई लोग करते हैं, कई लोग भागवत कथा भी करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन जब तक श्रीमद् भागवतम के ऊपर विश्लेषण और विचार और कथा एक भागवत के मुख से नहीं सुनी जाए तब तक वो भागवतम क्या है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध को अगर कोई सर्प स्पर्श कर ले तो विषैला हो जाता है हालांकि दूध पोषण देता है, उसी प्रकार से हालांकि श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, दूध के समान है, लेकिन अगर ये भागवत व्यक्ति के मुख से अगर नहीं सुनी गई है तब इसका लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति धाम में रह सकता है, धाम में रह करके बहुत कुछ कर सकता है, करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक वह गुरु के साथ जाकर के धाम की महिमा नहीं सुनता है और गुरुजी उसके आंख का आवरण उठा के धाम का दर्शन नहीं कराते हैं, तब तक वो धाम में रहने के बाद भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से हरि नाम भी, बहुत सारे लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। हम लोग एक संस्था में गए थे तो उनके जो भी आचार्य के उनका एक क्या बोलते हैं डायरोमा जैसा कुछ उद्घाटन था उनका, क्योंकि वो लोग तो पूजा अर्चना नहीं करते जिस प्रकार से हम शिला प्रभुपाद जी की पूजा अर्चन करते हैं वैसा नहीं करते, तो उनके लिए डायरोमा जैसे, तो उनका उद्घाटन था तो उनमें उनके लोग कुछ भजन गा रहे थे उनके ऊपर, तो बाद में वो भी हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे और कह रहे थे, उसमें लिखा था ट्रांसलेशन में कि ये मंत्र ही कलयुग में सब दोषों का निवारण करता है। तो ये ज्ञान है लोगों को, लोगों को व्यवहारिक ज्ञान भी है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और लोगों को शास्त्र से भी पता चलता है, लेकिन जब तक ये हरिनाम महामंत्र एक प्रमाणिक गुरु के द्वारा हमको प्राप्त नहीं होता है, संप्रदाय में प्राप्त नहीं होता है, तब तक इस हरिनाम के माध्यम से हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारी चीजें जो अन्य चीजों के रूप में भगवान विस्तार करते हैं अपने आप को जीव का लाभ करने के लिए, भला करने के लिए, इनका लाभ लेने के लिए गुरु को ही माध्यम बनाना पड़ता है। गुरु के माध्यम से भागवत श्रवण करते हैं, भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है, भगवान गुरु के माध्यम से ही हमको धाम का साक्षात्कार प्राप्त होता है। गुरु जी जो है वो धाम के ऊपर जो माया की एक परत होती है उसको हटा करके हमको वास्तविक धाम का दर्शन कराते हैं। गुरु ही हमको हरि नाम की महिमा बताते हैं। तो नाम वही है लेकिन गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बिना गुरु की शिक्षा के हम नाम में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गुरु वो है जो हरि नाम में हमारी श्रद्धा जागृत करते हैं, हमको हरि नाम का आश्रय देते हैं, हरि नाम की महिमा बताते हैं। इसीलिए जो शिक्षा गुरु है उनको हमारे भक्ति संप्रदाय में दीक्षा गुरु से भी अधिक महत्व दिया जाता है। दीक्षा गुरु जो है वो राधा मदन मोहन के प्रतीक माने जाते हैं, राधा मदन मोहन जो हमारे संबंध विग्रह हैं, तो उसी प्रकार से दीक्षा गुरु हमारा संबंध स्थापित करते हैं परंपरा के साथ, भगवान के साथ, और राधा गोविंद देव जो हमारे अभिधेय विग्रह हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे शिक्षा गुरु होते हैं जो हमको भक्ति का कार्यों का पालन कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो इसीलिए अगर दीक्षा गुरु किसी को नहीं प्राप्त हुए, मान लीजिए इस्कॉन में किसी कारणवश लेकिन अगर उसको शिक्षा मिली है, और शिक्षा गुरु के रूप में हमारे सबसे प्रोमिनेंट गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। उनकी शिक्षाएं जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक के लिए इस्कॉन में माने रहेंगे। उनकी शिक्षाएं ही इस्कॉन के सारे कार्यों का आधार है। तो इस प्रकार से शिक्षा का महत्व ज्यादा है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हमको हरिनाम के महत्व का पता चलता है, हरिनाम की महिमा का पता चलता है। तो जो शिक्षा गुरु हैं वो राधा गोविंद देव अविधेय तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो हमको सिखाते हैं कि हरिनाम अपराध रहित भावना से किस प्रकार लेना चाहिए। हालांकि नाम है लेकिन अपराधों से कैसे बचना चाहिए, इसका मार्ग निर्देशन गुरु करते हैं। इसीलिए इस्कॉन में ये प्रथा है कि दीक्षा के समय पर जब हम वचन देते हैं कि हम 16 माला चार नियम करेंगे, तो हर गुरु हर दीक्षा में किसी भी स्थान पर हो, किसी भी व्यक्ति के लिए दीक्षा हो, 10 नाम अपराधों के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि उनका कार्य है दीक्षा के समय नाम अपराधों के वर्णन करना और किस प्रकार से अपराध रहित नाम लेना है। तो इस प्रकार से अपराध रहित नाम लेने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की पूर्ण आवश्यकता है, बिना उसके नहीं ले सकते। तो ये जो भक्ति के बहुत प्रभावशाली कार्य हैं, इनको गुरु के माध्यम से करने से ही हमको वास्तविक लाभ होता है। तो गुरु जो है वो परमात्मा का सबसे जो दयालु कृपालु स्वरूप है वो है, वो भगवान से अभिन्न है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। और वो हमारे जीवन में आते हैं और भक्ति लता का बीज देते हैं। और भक्ति लता का बीज क्या है? ये भक्ति की जो कार्यकलाप हैं, जो गतिविधियाँ हैं, उनका वर्णन है। किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगना है, ये भक्ति लता बीज है। जो 9वां अध्याय है भगवद गीता का, परम गुह्यतम ज्ञान, उसमें परम गुह्यतम ज्ञान क्या है आप पढ़ेंगे तो उसमें परम गुह्यतम ज्ञान दो है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त प्रचित। ये परम गुह्यतम ज्ञान है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान को पत्र पुष्प फल और थोड़ा जल अर्पण करता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। परम गुह्य ज्ञान है। हम लोगों ने इसमें क्या, ये तो हम कब से करते हैं, लेकिन इस प्रकार भक्ति में सेवा में जुड़ना यही परम गुह्य ज्ञान। और दूसरा मन मनावा मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तो भक्ति इतना सरल है कि कभी कभी हमारे जटिल मन को लगता है कि इतना सरल कैसे हो सकता है, कुछ तो जटिलता होनी चाहिए। इतना सरल कि बस थोड़ा पत्रम पुष्पम फलम तो हम वो अर्पण किया भक्ति से तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्ति वास्तव में सरल ही, इतनी सरल है। प्रॉपर कहते हैं कि सो सिंपल समटाइम मिस इट, कभी कभी हमसे छूट जाएगी इतना सरलता है। तो इस प्रकार जब गुरु के आदेश के अनुसार व्यक्ति जीवन यापन करता है और गुरु के आदेशों पर मनन करके दृढ़ता पूर्वक भक्ति के मार्ग पर चलता है और गुरु के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति जागृत करता है, और गुरु के प्रति अगर आसक्ति है तो गुरु के प्रति आसक्ति का लक्षण है कि भगवान की सेवा के प्रति भी दृढ़ आसक्ति जागृत हो जाएगी। देखिए दो प्रकार के लोग हैं, एक लोग है जो गुरु को सब कुछ मान लेते हैं, गुरु ही भगवान है, तो वो मायावादी हो जाते हैं, और दूसरे लोग जो केवल भगवान को मानते हैं वो सहजिया हो जाते हैं। तो हमारा जो पंथ है उसमें गुरु और भगवान को साथ में लेकर के चलना होता है, एक को पकड़ के दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो एक पारदर्शी माध्यम है, लेकिन पारदर्शी माध्यम का अर्थ है कि उसके पीछे कौन है वही दिखेगा ना। अगर हम चश्मा पहने हैं तो हमको लेंस दिख भी नहीं रहा, लेकिन लेंस के माध्यम से बाहरी चीज दिखती है। तो गुरु को प्रभुपाद जी कहते थे ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। तो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है तो उनके पीछे जो चीज है वो दिखेगी। गुरु के पीछे कौन है? परम गुरु है। परम गुरु के पीछे और सारे के सारे ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, इसलिए उनके माध्यम से हमको भगवान कृष्ण की अनुभूति, भगवान कृष्ण के साक्षात्कार ये अपने हृदय में होना चाहिए। ये गुरु का उद्देश्य है। गुरु का उद्देश्य है कि शिष्य के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, भाव है, उसको जागृत करे। ये गुरु का उद्देश्य। लेकिन क्योंकि गुरु भगवान के प्रिय, किंतु प्रभोर या प्रिय एवतस्य, बहुत प्रिय है, इसलिए हमारा जो प्रेम है गुरु और भगवान के प्रति साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि गुरु हमको भगवान के साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के पास लेके जाते हैं। इसलिए गुरु और भगवान दोनों के प्रति प्रेम समान रूप से साथ साथ बढ़ना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कई बार हमको लगता है हम गुरु के प्रति निष्ठा है, लेकिन गुरु के काम के लिए, गुरु के प्रति निष्ठा के लिए बाकी वैष्णवों को और बाकी चीज़ों को ठीक प्रकार से नहीं करते, तो उस प्रकार से गुरु प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि गुरु का आदेश है कि वैष्णवों को प्रसन्न करो और भगवान की सेवा करो। तो गुरु की प्रसन्नता को आधार बनाकर हमको वैष्णवों की सेवा में लगना चाहिए और विग्रह की सेवा करना चाहिए, तब जाकर के हरि गुरु वैष्णव तीनों की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो ये विज्ञान है। अगर ये विज्ञान को ठीक प्रकार से नहीं जान पाएंगे तो भक्ति में प्रगति करना बहुत कठिन है। कभी कभी प्रश्न आता है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ भाव जागृत नहीं हो रहा है, कुछ अनर्थ कम नहीं हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार से है कि हम बोले हम दवाई है और बीमारी कम नहीं हो रही, लेकिन अगर दवाई सही है तो बीमारी कम होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि दवाई ठीक प्रकार से ली जाए, वो भी एक पद्धति है। ऐसा कह सकते हैं कि दवाई लेने से बीमारी ठीक हो जाती है, इसमें इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन दवाई लेने से बीमारी ठीक हो जाती है, दवाई लेने की जो प्रक्रिया है वो ठीक प्रकार से समझनी पड़ेगी। खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, कुछ दवाइयाँ एलोपैथी आयुर्वेदी ऐसा होम्योपैथी, अभी मैं तीनों प्रकार का पैथी से प्रयास कर रहा था, तो सबके अपने अलग अलग नियम हैं। आयुर्वेद में जाएंगे तो खाने के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन है, ये नहीं खाना ये खाना। एलोपैथी में जाएंगे तो खाने का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दवाई का चीज़ें हैं। तो दवाई लेने से बीमारी ठीक होती है, इसमें ये जानना कि दवाई कौन सी है और किस प्रकार से उसका सेवन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और कई बार दवाई हमारे पास रहती है, या तो सेवन नहीं करते हैं, लेकिन या फिर सेवन अगर ठीक प्रकार से नहीं किया जाए, ठीक परिस्थिति में सेवन नहीं किया जाए, तभी वो बीमारी को पूरी तरह से दूर करने में सफल नहीं हो। तो इसी प्रकार से हमारे पास कृष्ण भावनामृत ज्ञान है, हमारे पास भक्तिमय कार्य है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस मनोस्थिति में वो कार्य करने हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तो इतना सुंदर शब्द यूज करते हैं, वन मस्ट प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इन डिवोशनल सर्विस। कोई बोलेगा ये क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो ये आता है परमात्मा से संबंधित जो दो मुख्य श्लोक हैं, कई सारे हैं, चार मुख्य श्लोक हैं, लेकिन उनमें से दो जो मुख्य श्लोक हैं, दसवें अध्याय में भगवद्गीता के, जिसमें भगवान वचन देते हैं कि मैं हृदय के अंदर से एक भक्त को, एक प्रमाणिक शिष्य को मैं ज्ञान देता हूँ, लगभग यहीं के जैसा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। किस प्रकार से वो भक्त मेरे पास आएगा उसका ज्ञान मैं देता हूँ, बाहरी रूप से गुरु के रूप में, आंतरिक रूप से परमात्मा के, किसको देता हूँ, एवं सतत युक्तानाम, जो सतत रूप से बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के, जो सतत युक्तानाम, जो सदैव मेरी सेवा में युक्त है, जो मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त करना चाहता है, जो मेरी सेवा में बिना रुके लगा रहना चाहता है, ऐसा उसका भाव है कि भगवान की साक्षात सेवा करनी है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो मार्ग है ये भगवान को एकदम साक्षात देखने का मार्ग है। अवर प्रोसेस इज टू हैव दर्शन ऑफ द लॉर्ड फेस टू फेस एंड रेंडर पर्सनल सर्विस टू हिम। हम लोग कोई ब्रह्मवादी नहीं है कि ब्रह्म में लीन हो जाना है, या परमात्मावादी है कि परमात्मा रहेंगे हम भौतिक दुखों से दूर हो जाएंगे, ये हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग है सेवा में बिना रुके, बिना किसी व्यवधान के लगे रहना। तो एवं सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति इस प्रकार की कामना करता है, बिना रुके सेवा में लगा रहता है, और किस प्रकार से भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भजन करता है, जो नाम उच्चारण करता है, या कीर्तन करता है, या स्मरण करता है, या जो भी अन्य भक्ति में नवविधा भक्ति का कार्य करता है, वो किस प्रकार करता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो ये जो दो स्थिति है, ये जो दो स्थिति जिस भक्त के पास है उसके लिए ददामि बुद्धि योगमतम होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई अगर गुरु के लिखे हुए ग्रंथों को नहीं भी पढ़ पाए, कोई आध्यात्मिक संस्था में होने के बाद भी उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाए, लेकिन अगर वो सेवा में लगा हुआ है और सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भावपूर्ण से कर रहा है, सेवा से ये नहीं कर रहा कि सेवा करने के बाद इसका क्या मुझे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जब लाभ मिलने की बात आ गई, लाभ मिल गया फिर बाकी क्या मिलेगा। अगर हम जाते हैं दुकान पर जाते हैं और कुछ चीज़ खरीदते हैं और उसको पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद संबंध खत्म। लेकिन जब गिफ्ट दिया जाता है तो गिफ्ट में संबंध बनता है, क्योंकि गिफ्ट का जो ऋण है वो पैसा दे करके नहीं उतार सकते। तो इस प्रकार से अगर सेवा का वास्तविक लाभ लेना है, कृपा मिलनी है, तो फिर सेवा से जो फल मिलने वाला है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर सेवा से हमने फल प्राप्त कर लिया तो संबंध खत्म। भगवान बोले आपने सेवा की और आपको गुणगान मिल गया और आपको इसका लाभ मिल गया, अभी संबंध खत्म। इसीलिए बिना फ्रूटिव मेंटेलिटी के, बिना फल बुद्धि के सेवा करना, और केवल इसलिए सेवा करना क्योंकि हम भगवान के शाश्वत रूप से सेवक हैं, भगवान सेव्य हैं और हम सेवक हैं, और सेवा करना हमारा धर्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसने कहा अभी ये अथॉरिटी बदल गया तो हम सेवा नहीं करेंगे, इसने हमको डांट दिया तो हम सेवा नहीं करेंगे, और हमको इससे लाभ नहीं हुआ, हमको कुछ फैसिलिटी नहीं मिला तो सेवा नहीं करेंगे, तो ये सेवा नहीं है, ये तो एक व्यवसाय वाली बुद्धि है। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वो एक दवाई लेने का, जो दवाई सेवन करने का औषधि सेवन करने का एक मार्ग है जिसके कारण हम फंस जाते हैं कि हम दवाई लेते हैं लेकिन जो दवाई को गर्म पानी के साथ लेना है खाने से 1 घंटा पहले, उसको हम ठंडे पानी से खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं, तो फिर दवाई काम नहीं करती है। इसीलिए ये जो है ये बिना फ्रूटिव मेंटेलिटी के भगवान की प्रसन्नता की सेवा करने का मार्ग है हर चीज में। लेकिन हर चीज़ में हम जुड़ते हैं, जप हुआ तो हमको कितना आनंद आया, कीर्तन में हमको कितना आनंद आया, ये सेवा में हमको, तो हम अगर आनंद ले लिया तो फिर तो उसका फिर प्रगति कहाँ होगी, फिर तो व्यवसाय वाली बुद्धि हो गई, हमको उसका लाभ मिल गया। लेकिन केवल भगवान की प्रसन्नता को उद्देश्य बनाकर जब सेवा करते हैं तब भक्ति में प्रगति होती है। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर कहते हैं कि जो भक्त इस प्रकार से सेवा करता है उसके हृदय में मैं ज्ञान देता हूं, और उसके हृदय का कलमश कैसे दूर होता है, उसके हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित होकर के अगला क्या, तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जमत नाश्यामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भाषत। अगर उसने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं भी किया है लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार निर्देश के अनुसार अगर प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है तो उसके हृदय से सब कलमश स्वतः ही दूर हो जाएगा। और उदाहरण है हमारे गीता पांडा, दक्षिण भारत के, उनका नाम नहीं पता है, उनको गीता पांडा ही बोलते हैं, जिनको कि गीता के शब्द संस्कृत शब्दों का अर्थ पता नहीं था लेकिन भगवान का पूर्ण साक्षात्कार था। तो हम विशेष रूप से शहर में जो भक्ति करते हैं और पूना जैसे शहर में, हम लोग भक्ति को एक इंटेलेक्चुअल आइडिया बना लेते हैं कि ये एक ऐसा बुद्धि के स्तर का चीज़ है कि हम ऐसा करेंगे तो इससे, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा बैठेंगे ऐसे माला पकड़ेंगे और आँख खोलेंगे तो ऐसा जब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भक्ति पूरा के पूरा कृपा का मार्ग है और वो कृपा प्राप्ति के लिए हमारी मनोभावना सबसे महत्वपूर्ण है। और एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड, सब मनोभावना पर डिपेंड करता है। तो वो एटीट्यूड वो ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जब दवाई ली जाती है तब वो दवाई असर करती है। केवल दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी, ये ठीक भी है और ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं भी है। वो ठीक दवाई जब ठीक प्रकार से उसको सेवन किया जाएगा तब बीमारी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है, भक्ति में कार्य है, उनको अगर ठीक चेतना में किया जाएगा तब हम प्रगति करते हैं। और वो प्रगति क्या है कि गुरु के आसक्ति के माध्यम से हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। और जब गुरु वपु के रूप में हमारे समक्ष प्रकट नहीं रहते हैं तो उस समय पर परमात्मा हमारे समक्ष आकर के साक्षात मार्गदर्शन करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि ये शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। वो परमात्मा उसको अलग अलग प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं बस दो चीज़ बता करके अंत करता हूँ। ये जो श्लोक है इसका दो बहुत मुख्य अभिप्राय है हमारे इस्कॉन संस्था में। पहला है कि जब प्रभुपाद जी जब ये जगह छोड़कर चले गए तो उसके बाद जब लोगों को प्रश्न आया कि कैसे इस्कॉन चलेगा, इस्कॉन का मार्गदर्शन कैसे होगा, तो उस संदर्भ में इन ये जो सीरीज है, जो श्रृंखला है श्लोकों का, उसका बहुत गहनता से हमारे जीबीसी और वरिष्ठ भक्त अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से जितना हम प्रभुपाद जी के आदेशों को, जिनको हम जानते हैं, उनको हम तत्परतापूर्वक पालन करेंगे, उतना ही प्रभुपाद जी और भगवान हमको मार्गदर्शन करेंगे कि इस्कॉन आगे कैसे बढ़ेगा। ये हर एक भक्त का व्यक्तिगत कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं हमको दी है उनको समझकर उनको जीवन में लगाएं जिससे कि हम इस्कॉन की प्रगति में योगदान कर पाएं। केवल ये नहीं बोला कि जीबीसी ये कर रहे हैं, मैनेजमेंट ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये भी तो प्रश्न है। आपके पास भी ग्रंथ है, आपके पास भी चीज़ें, अन्यथा हम बहुत भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि हम सभी साधक भक्त हैं, अलग अलग साधक भक्त अलग अलग प्रकार से साधना के मार्ग पर चलते हैं। तो उनको देखकर मापदंड नहीं बनाना चाहिए, मापदंड शास्त्र के आधार पर बनाना चाहिए कि सही भक्ति, वास्तविक भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, प्रभुपाद की हमसे क्या इच्छा है, उसके लिए जानना चाहिए। तो इस संदर्भ में ये जो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार से गुरु और परमात्मा एक साथ हमारी सहायता करते हैं। और दूसरा, एक बार इस्कॉन में ऐसा एक क्या कहते हैं लहर आई थी, वेव आई थी कि हम लोग भगवत धाम से नहीं आए हैं, हम लोग महाविष्णु से आए हैं। कुछ लोगों को पता रहेगा लेकिन नहीं पता तो भी चलेगा, प्रभुपाद जी तो साक्षात कहते हैं कि हम भगवत धाम से आए। तो ये जो श्लोकों की श्रृंखला है इसका कोटेशन उस पुस्तक में बहुत विस्तार से किया गया है क्योंकि यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि आप और हम साथ साथ थे, चिरकाल से हम साथ साथ हैं और हम पहले एक हमारे घर में थे, अभी हम यहाँ पर हैं। तो इन श्लोकों को उद्गत करते हैं ये प्रमाणित करने के लिए कि हम वास्तव में भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में थे लेकिन हम मूर्खता पूर्ण भावना से, मूर्खतावश अब यहाँ पर भौतिक जगत में आ गए और ये भौतिक शरीर प्राप्त किया है लेकिन अभी किसी न किसी प्रकार से भगवान की और प्रभुपाद जी की अवतार की कृपा से अभी हमको वापस जाने का अवसर मिला है, वो भी डायरेक्ट ट्रेन मिला है, फ्लाइट मिला है, ट्रेन तो रुक रुक के जाती है, फ्लाइट मिला है, मौका मिला है, अभी एयरपोर्ट तक हमको प्रभुपाद जी लेकर के आ गए, इस्कॉन मंदिर से जोड़ दिया, अभी क्या करना है, बस वहां पर रहना है और फ्लाइट टाइम पर आकर के निकल जाए। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। और ये श्लोक जो 12-14 श्लोक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन दो चीज़ों के लिए कि इस्कॉन का आगे का भविष्य कैसे चलेगा, कैसे हमको प्रभुपाद जी से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इसका सारांश यहाँ पर है। और हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ थे और उनका संग छोड़कर यहाँ पर आए हैं, इस बात को स्थापित करने के लिए इन श्लोकों को कई जगह पर कोट किया है। इससे हमको एक तरह का पश्चाताप होना चाहिए कि हम भगवान का धाम छोड़ करके यहाँ, प्रभुपाद कहते सड़ने के लिए, वी हैव कम हियर टू रॉट, प्रभुपाद जी के लेक्चर बोलते हैं, वी हैव कम हियर टू रॉट, सड़ने के लिए हम आए हैं भौतिक जगत में। तो उससे एक पश्चाताप की भावना प्राप्त होनी चाहिए और दूसरा एक दृढ़ निश्चय प्राप्त होना चाहिए कि अभी हमको ये भक्ति का मार्ग मिला है, अभी हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और उसको कैसे पालन करना है उसके लिए उपदेशामृत को बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रभुपाद।